नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया। फॉस्फेट और पोटाश खाद पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूरी। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन विभाग कल सभी राजनीतिक दलों और जिला कलेक्टरों के साथ बैठक करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में बसों में आग लगने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग को बसों में सुरक्षा मापदंड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी कई जगह बारिश, बरसात से तापमान में 5 से 10 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। उन्होंने बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे।
एक पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। अब करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब पुलक घोष एंड पंकज जैन हु इज सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ही विल बी द मेंबर्स।
बताया कि मंत्रिमंडल ने रबी 2025 के लिए लगभग 37,952 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सब्सिडी वाले किफायती और उचित मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
पी और एस न्यूट्रिएंट्स है जो कि इस रबी में काफी बड़ी मात्रा में यूज होते हैं, उसके प्राइस करीब 1-10% हायर है कंपेयर टू दी प्रीवियस प्राइसेस सब्सिडी एक्चुअली। देन कैबिनेट अप्रूव अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसे लेकर कल राजनीतिक दलों और सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की जाएगी। वहीं 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक गणना प्रपत्रों के वितरण और संग्रहण का काम होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया है। श्री महाजन ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण के संबंध में स्कूल, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर ऑनलाइन आवेदन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
चुनाव आयोग ने जो SIR की जो गतिविधि थी उसको अब जो ये सेकेंड फेज है, उस सेकेंड फेज में जो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अब ये प्रारंभ होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मतदान करने के लिए जो पात्रता है एक मतदाता बनने के लिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र का वो सामान्य निवासी होना चाहिए और किसी कानून के अंतर्गत उसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। वे आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा के 8वें सत्र को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया भर की सभ्यताएं लंबे समय से सूर्य को जीवन और ऊर्जा के परम स्रोत के रूप में मानती रही हैं। इस मौके पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विश्व की कुछ सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में भारत की प्रमुख भागीदारी है। 4 दिन के कार्यक्रम में 124 देशों के 40 से ज्यादा मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य टिकाऊ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक सहयोग बढ़ाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया और राजस्थान फाउंडेशन की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जन्मभूमि की मिट्टी की खुशबू देश विदेश में फैलाने के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें राजस्थान आने का न्योता दिया। उन्होंने घोषणा कि राज्य सरकार हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करेगी ताकि प्रवासियों का उनकी मातृभूमि से सीधा जुड़ाव बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हेरिटेज हवेलियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रीको की नई प्रत्यक्ष भूमि आवंटन नीति के तहत निवेशकों को सुविधाएं दे रही है और 2027 तक किसानों को दिन में पूरी बिजली देने का लक्ष्य है।
राजस्थान का कोई भी भाई दुनिया के किसी भी देश में गया है या देश के किसी प्रदेश में गया है, मुझे इस बात की खुशी है कि उसने मां राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को फैलाने का काम किया है। हमने प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन हर साल 10 दिसंबर को जयपुर में करने जा रहे हैं। आज मैं यहां आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए, पीले चावल देने के लिए आपके बीच में आया हूँ और मैं कहना चाहूंगा, पधारो हमारे देश।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत आज खाटू श्यामजी कॉरिडोर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। दिया कुमारी ने कहा कि खाटू श्यामजी प्रमुख धार्मिक नगरी है और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर दिया कि जनप्रतिनिधियों और स्थानीय सुझावों को शामिल करके ही विकास कार्य अधिक प्रभावी बनेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में बसों में आग लगने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग को बसों में सुरक्षा मापदंडों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पिछले दिनों जैसलमेर तथा आज जयपुर दिल्ली हाईवे पर हुई आगजनी की घटना को गंभीर माना। आयोग ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि सभी यात्री बसों में परिवहन नियमों और यात्री सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। आयोग ने आज मनोहरपुर में बस में आग की घटना पर जयपुर जिला कलेक्टर, परिवहन आयुक्त सहित अन्य से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इस बीच मनोहरपुर बस आगजनी घटना में गंभीर रूप से झुलसे हुए 5 लोगों का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बस में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से मजदूर अपने सामान के साथ जयपुर आ रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है।
यहाँ पर पुलिस की FSL टीम है, वो पूरी जांच कर रही है और RTU DTU उनकी टीम भी सारी चीजों को देख रही है। घायलों को SMS रेफर कर दिया गया है। जो लोग सुरक्षित बच गए थे उनको पास के ही एक सुरक्षित स्थान पे बिठा के उनकी जो सामान्य देखभाल है की जा रही है। इसकी पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी होगी और उसमें जो लोग दोषी होंगे निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उधर जैसलमेर बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। हादसे में झुलसे एक व्यक्ति पीर मोहम्मद की आज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मृत्यु हो गई। ये पीर मोहम्मद के परिवार में 5वीं मौत है। इससे पहले उनकी पत्नी और 3 बच्चों की भी जान जा चुकी है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि उनके यहाँ अभी भी 2 घायल भर्ती हैं जिनकी हालत स्थिर है। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में 80 लाख टन से अधिक वेस्ट का उपयोग किया गया है। आज नई दिल्ली में स्मार्ट सड़कों का भविष्य विषय पर CII सम्मेलन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल और मेथनॉल जैसे जैव ईंधनों के इस्तेमाल से परिवहन क्षेत्र की लॉजिस्टिक लागत में 5 से 6% की कमी आई है। जालौर जिले में आज दो कारों की टक्कर में तीन लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा सांचौर के नजदीक भारतमाला नेशनल हाईवे पर लाछड़ी टोल प्लाजा के पास हुआ। दुर्घटना में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका सांचौर के अस्पताल में उपचार चल रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी बारिश का दौर बना हुआ है। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा सलूम्बर, चित्तौड़, भीलवाड़ा सहित कई स्थानों पर आज भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सलूम्बर में बारिश से खेतों में पानी भर गया। उधर चित्तौड़ में बारिश से जलाशयों और बांधों में पानी की आवक हुई है। लगातार बारिश के कारण जिले के घोसुंडा बांध के दो गेट खोले गए हैं।
चित्तौड़गढ़ में विगत 36 घंटों से हो रही बरसात से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बरसात से जलाशयों में पानी की आवक के चलते गोचुंडा बांध के दो गेट खोले गए हैं। वहीं कपासन का गुलाब सागर बांध 8 साल बाद इस बेमौसम बरसात में छलक गया। कपासन के राजराजेश्वर तालाब में भी पानी की भारी आवक हुई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक गंगरार में 114 मिलीमीटर और बड़ी सादड़ी में 105 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। इस बरसात से खेतों में पड़ी हुई फसल में भी खराबा हुआ है। कई किसानों ने बुआई भी कर दी थी, लेकिन खेतों में पानी बढ़ने से बीज नष्ट हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर बरसात के चलते कृषि उपज मंडियों में जिंसों की ज्यादा आवक होने से और खराबा होने की आशंका के चलते मंडियों में भी अवकाश घोषित किया गया है। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़।
वहीं पाली में कल से हो रही बारिश का दौर आज थम गया है, लेकिन तेज हवाओं के कारण ठंडक बढ़ गई है। उधर बाड़मेर और जालौर में तेज हवा चलने से दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई। बेमौसम बारिश से कटी हुई फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि कल से बारिश में कमी आएगी। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक ने बताया कि दक्षिणी हिस्सों में हल्की बरसात हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया। फॉस्फेट और पोटाश खाद पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूरी। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन विभाग कल सभी राजनीतिक दलों और जिला कलेक्टरों के साथ बैठक करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में बसों में आग लगने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग को बसों में सुरक्षा मापदंड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी कई जगह बारिश, बरसात से तापमान में 5 से 10 डिग्री तक की गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।